वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवे भगवती यश नैसर्गिकी रति कल के सायंकालीन सत्र में हम श्रवण कर रहे थे प्रह्लाद महाराज उनके गुणों का वर्णन सुन रहे थे हम प्रह्लाद महाराज तो गुणों की खान है भगवान में अनंत अनंत गुण है उन्हीं के भक्तों में भी भगवान के गुण पाए जाते हैं जैसा बाप वैसे कौन होता है बेटा भी होता है तो हम सभी के वैसे बाप हम सभी के बाप या बा कौन है विठोबा की मसोबा कि खंडोबा कि भैरोबा या खंडोबा नहीं मसोबा सा बा कोणा है विठोबा तो हम सभी के केवल प्रह्लाद महाराज के ही नहीं प्रह्लाद महाराज विशेष भक्त है महाभागवत है लेकिन जिनके प्रह्लाद महाराज है उनके हम भी है हम में वो गुण अभी तक उतने प्रकाशित उदित नहीं हुए जितने प्रह्लाद महाराज के चरित्र में वो स्पष्ट है उन गुणों का स्मरण करते ही करते करते वो गुण हम में भी आ जाते हैं तो एक विशेष गुण का वर्णन यहां गुणैरलम असंख्यैर महात्म्यम तस्य सुच्यते और प्रह्लाद महाराज के गुण तो अगिनत है इसकी कोई संख्या अमर्याद है कौन गन्ना गिनती कर सकता है उन गुणों की लेकिन अगर थोड़े में संक्षिप्त में ही कहना अगर कोई चाहेगा और ये संक्षिप्त में कहा है एक पंक्ति में अगर कहना है भगवान प्रह्लाद महाराज के गुण तो ऐसा कहा जा सकता है वासुदेव वो पंक्ति ऐसी हो सकती है वासुदेव भगवती यश नैसर्गिकी रति ही क्या गुण वासुदेव में नैसर्गिकी रति ही स्वाभाविक आकर्षण जिनका वासुदेव में कृष्ण में नरसिंह में ऐसे प्रह्लाद महाराज न्यस्त क्रीडन को बालो जड़वत तन्मय तस्तया और बालक होते हुए भी खेलने में इस बालक को आकर्षण नहीं था जैसे बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति तो खेल में होती है ओह टुडे इज क्रिसमस तो नॉट टुडे टुमारो कल क्रिसमस है तो बच्चे पहले क्या सोचते हैं हम खेलेंगे क्या हुआ, बालावस्था क्रीड़ा सकता, बाल अवस्था में क्रीड़ा में खेल कूद में आसक्ति होती है। ये इस भौतिक जगत में बालकों में प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन प्रहलाद महाराज में ऐसा आकर्षण नहीं था, क्योंकि इस संसार के साधारण बालक नहीं थे वे। न्यस्त क्रीड़न को बाला कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा न वेद जगदीदृशम। कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा, इस संसार के बद्ध जीवों पर प्रभाव होता है, ग्रहों का, नक्षत्रों का, कभी गुरु का तो कभी मंगल का तो कभी शनि का भी। इसे जीव बड़े त्रसित और ग्रसित होते हैं, तो ऐसे अलग अलग ग्रहों के प्रभाव की चर्चा हम सुनते रहते ही है, उसे भयभीत रहते हैं हम। प्रहलाद महाराज के भी पीछे एक ग्रह लगा हुआ था। कौन सा था वो ग्रह? कृष्ण ग्रह। कौन सा ग्रह? साक्षात कृष्ण ही ग्रह बने हैं। कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण कैसे सूर्य समान है, एक ग्रह है या एक तारा है, तो ऐसा ऐसे ऐसे कृष्ण का प्रभाव। माया है अंधकार, कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण सूर्य का समान है, और माया है अंधकार, और माया कैसी? अंधकार है। जहा कृष्ण तहा नहे मायेर अधिकार, लेकिन जहा कृष्ण है वहां माया का अधिकार नहीं चलता है, वहां से माया दूर। क्या प्रकाश है वहां अंधेरे का स्थान नहीं है, अंधेर कोठड़ी है, कमरा है, गुफा है, वह प्रकाश का कोई दीप जलाइए अंधेरा भाग जाता है। जैसे वैसे ही जो कृष्ण के साथ है, फिर और सारे ग्रह नक्षत्र दूर से ही प्रणाम करके पीछे हटते हैं। कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा, तो इसे हर वक्त अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे बताने के लिए समय भी पर्याप्त नहीं होता ऐसी व्याख्या के लिए, लेकिन हमको समझना चाहिए। हाँ हाँ, प्रहलाद महाराज के पीछे अगर कृष्ण ग्रह लगा हुआ था, आप भी पसंद करोगे ऐसा ग्रह कि आपको शनि पसंद है? आप कोई प्रार्थना करते हो, हे शनि देवता मेरा पीछा नहीं छोड़ना, लगे रहो। लेकिन हम लोग तो पीछा चैत्र भगवान को प्रार्थना करते रहते हैं, हमारा पीछा नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना प्रभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई कह सकता है कि कैसे संभव है, ताकि हमको सदैव प्रकाश प्राप्त हो उस कृष्ण ग्रह, कृष्ण जो तारा है उसकी किरणें हम तक पहुंचती रहे। ये भागवत भगवान है, भागवत कृष्ण है। अभी हम एकलव्य प्रभु से सुन रहे थे, उन्होंने भागवत उठाया, भागवत उठा के कह रहे थे दिस इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण, ये कृष्ण से अभिन्न है, भागवत ही कृष्ण है। कलौ नष्ट दृशामेशाम पुराण अर्क उदितः। अर्क मतलब सूर्य। इस कली काल के अंधेरे में, अंधेरा जब कली का छाया तो भगवान प्रकट हुए। किस रूप में? श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान प्रकट हुए। ये भागवत में ही लिखा है। भागवत के प्रारंभ में ये वर्णन है। कलौ नष्ट दृशाम, दृष्टि नष्ट हुई। कलयुग का जीव अगर देखना चाहते तो कैसे देखेगा? पुराण अर्क उदितः। सुनिए क्या क्या कहा जा रहा है। पुराण, पुराण प्रकट हुआ। उदितः, उदित हुआ। कौन उदित हुआ? पुराण। कौन सा पुराण? भागवत पुराण, भागवत महापुराण। और कैसा है भागवत महापुराण? पुराण अर्क उदित। अर्क मतलब सूर्य, सूर्य सम। फिर श्रीमद् भागवत का श्रवण करना और श्रीमद् भागवत की सुनी हुई बातों का स्मरण करना, चिंतन भी करना। जो सुना है वही छोड़ के, जैसे हम लोग गेट से बाहर हो गए तो फिर भागवत पीछे छोड़ दिया, फिर दूसरे दिन जब आएंगे तो पुनः भागवत का साथ, भागवत को साथ ले जाना, क्योंकि भागवत भगवान है। भगवान प्राप्ति के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान की प्राप्ति। और जहां भी हम जाए वहां अगर हम स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे उस कथा के, कथा का चिंतन, स्मरण, मनन कहा है भागवत महात्म में। क्या करना चाहिए? मनन करना चाहिए श्रीमद् भागवत का। और क्या अंतर हुआ? जब एक समय भागवत कथा सुनाई, धुंधकारी को सुनाई गोकर्ण ने, श्रीमद् भागवत महात्म में सुनाई बात, तो कथा के अंत में एक विमान आया, लैंडिंग हुआ। उस विमान में बैठे थे जो एयर होस्ट, एयर होस्टेस तो नहीं थी, एयर होस्ट ही थे। उन्होंने संकेत करके बुलाया एक व्यक्ति की ओर उंगली का, यस यू यू आजा। और सीढ़ी चढ़ के विमान में प्रवेश किए और अपना स्थान ग्रहण करके, अब इंजन शुरू होने वाले ही थे तो जो वक्ता थे गोकर्ण, उन्हें रुको तो सही, अरे हुआ क्या? अरे तो नहीं कहा होगा, ये तो पुणे की भाषा हो गई। अरे अहो तो कहा होगा कम से कम, और भी अच्छी भाषा है वैसे। उन्होंने कहा कि या कथा तो कईयों ने सुनी लेकिन आप तो एक ही व्यक्ति को हुआ वैकुंठ ले जा रहे हो, तो ये भेद क्यों? वक्ता तो मैं एक ही हूं और सारे मेरे श्रोता है, एक ही तो कथा सभी ने सुनी और आप तो एक ही व्यक्ति को वैकुंठ ले जा रहे हो, क्या भेद, क्या अंतर है? तो फिर उन्होंने समझाया, अंतर ये है, कई बातें उन्होंने समझाया, 1 2 3। तो उसमें से मुख्य बात उन्होंने ये कही कि जैसे इस व्यक्ति ने, धुंधकारी ने, एक तो कथा ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक तो सुनता ही था लेकिन फिर दो सत्रों के मध्य में उस कथा का ये मनन भी करता था, उस भक्ति भाव को बनाए रखता था। बाकी लोग तो झट से बाजार भाव में फंस जाते थे, मोबाइल। तो ये भेद है, उन्होंने समझाया, उन हरिदासों ने समझाया जो वैकुंठ से विमान लेके आए थे धुंधकारी के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि समस्या तो नहीं है, वैसे आप पुनः कथा कीजिए और हमने जो आपको कही ये नियमावली, इसका अगर पालन करते हैं आपके श्रोता तो हमें कोई समस्या नहीं है। हम तो अभी इस वक्त छोटा सा हेलीकॉप्टर लाए थे, नेक्स्ट टाइम जंबो जेट लेके आएंगे। वैकुंठ में क्या, भगवान के धाम में तो किसी का अभाव नहीं है। पुणे में तो कोई उड़े क्या, पुणे तो वहां तो कोई उड़े, कोई अभाव तो नहीं है। तो फिर वैसे ही हुआ, पुनः कथा हुई। तो दो दिन तो बीत गए हमारे, आज से इसका पालन कर सकते हो। मनन, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चिंतन, मनन, कॉन्स्टेंट हम लोग चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते, कोई रोक नहीं सकता हमें। फिर सुनी हुई जो बातें हैं वो हजम होगी, वो हमारी बनेगी। तो पुनः उन्होंने जब कथा का आयोजन किया, वैसे एक वही रह गई बात, तो उस कथा के पुनः जो 7 दिवस की कथा हुई, तो इस समय तो सभी ने बड़े ध्यान से श्रद्धा से कथा का श्रवण किया और मनन चिंतन भी करते थे। कई सारे नियम भी है, वैसे पूरा एक अध्याय है जो कथा व्रति है, कथा के श्रवण का जिन्होंने व्रत लिया हुआ है। कई प्रकार के व्रत है, शुक्रवार का, मंगलवार का, एकादशी का, या ब्रह्मचर्य व्रत, कई सारे व्रत है, संकल्प है। तो आप जब कथा श्रवण के लिए आते हो भागवत कथा, तो आप कथा व्रती बन जाते हो। तो कथा व्रतियों के लिए, जिन्होंने कथा श्रवण का व्रत संकल्प लिया है, उनके लिए कई सारे नियम है जिनका अध्ययन वैसे करना होगा आपको अलग से। कभी श्रीमद् भागवत महात्म्य में बातें सुनाई हैं। तो मुख्य बात तो चिंतन मनन की भी है। तो हम ये बता रहे थे, ये फिर हम वो कृष्ण ग्रह हमको भी लगेगा, हम जहां भी है कृष्ण हमारे साथ रहेंगे। उस कथा के चिंतन और मनन के साथ, और प्रभु का नाम भी तो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन करो। हमारे प्रभुपाद कहा करते थे ये भगवान का टेलीफोन नंबर है, कहते टेलीफोन नंबर, ये जो महामंत्र है ये क्या है, भगवान का टेलीफोन नंबर। इसमें कितने 16 डिजिट्स है, इतना बड़ा किसी का नंबर है, हाँ, प्रधानमंत्री का भी नहीं है। इसे पता चल सकता है कि ये महामंत्र, ये जो फोन नंबर, ये VVIP जो भगवान का फोन नंबर। तो इस संसार में तो आपत्ति सदैव बनी रहती है। तो जब जब समस्या है, और समस्या के पहले भी दुख आने पर तो सभी याद करते हैं, लेकिन सुख में अगर कोई उनको स्मरण करेगा तो फिर दुख काहे का होय, कहां है हा? सुख में जो सुमरण करे दुख काहे का होय। आप जब दुखी होते हो, माय गॉड, ओ ये वो, आप कहोगे बचाओ, नहीं, जब कोई समस्या नहीं है सब ठीक ठाक, ओके, एवरीथिंग इज फाइन, आप जब कहते हो उस अवस्था में क्या करो, भगवान का स्मरण करो, तो फिर वो दुख काहे का होए, दुख आएगा ही कहां से। तो वह या आ भी जाता है तो क्या करो, फिर भगवान को फोन कर सकते हो, भगवान को पुकारिए। इस प्रकार की व्यवस्था है, और ये सारे पैकेज को, फिर एक भागवतम हो गया, एक नाम संकीर्तन हुआ, फिर भगवान के विग्रह का राधा कुंज बिहारी में जाके दर्शन करना, ये दूसरा बात हुई, और क्या बड़े बड़े उत्सव हुए, और तीर्थ यात्राएं, वृंदावन जाना है, पंढरपुर जाना है, कई व्रत है, एकादशी है, ये सारी नियमावली को जब हम एक पैकेज कर देते हैं, इसी का नाम बन जाता है, ये है धर्म। भगवान ने दिए हुए, मनुष्यों को दिए हुए नियम वो धर्म कहलाते हैं, और ये धर्म हम मनुष्यों के लिए है, और ये ऐसे धर्म को अगर हम हमारे जीवन से अलग अगर हम करते हैं, तो फिर हम मनुष्य नहीं बनते, हम मानव नहीं रहेंगे, हम बन जाएंगे दानव। धर्मे नहीं ना पशु भीर समाना, ऐसे धर्म को हम समझ अगर समझ सकते हैं, और समझने की क्षमता तो रखते ही जरूर है, और ऐसे धर्म की रक्षा करते हैं हम यदि, तो होगा क्या, धर्मो रक्षति रक्षतः। जो भी धर्म की रक्षा करेगा उसकी रक्षा करेगा धर्म। आदान प्रदान है, आप चाहते हो कि आपकी रक्षा हो, आप धर्म की रक्षा करो, वही धर्म आपकी रक्षा करेगा, मेरी रक्षा करेगा। तो इसी धर्म के अंतर्गत ये जो अलग अलग विधि विधान है, या विधि निषेध भी है, कुछ विधि है कुछ निषेध है, इनका पालन करने से फिर हम लोग कृष्ण के संग में रहेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज को सदैव संग प्राप्त था कृष्ण ग्रह का, तो वो ग्रह हमें भी लगेगा। मध्याह्न काल में मान लो कि मध्याह्न काल है, दोपहर के ठीक 12 बजे हैं, ओके, सूर्य बिल्कुल अपने सिर पर है, उस समय अगर आपने एक हवाई जहाज में बैठ के उड़ान किया, और आप पूरब से पश्चिम की ओर भ्रमण करते रहे, पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते रहे हवाई जहाज में बैठे हुए, और उस हवाई जहाज की गति स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्सीमेटली, थोड़ी स्पीड थोड़ी बढ़ानी होगी, 25,000 पूरा उसका सरकमफ्रेंस जो है पृथ्वी की प्रदक्षिणा कितनी, 25,000 किलोमीटर की है, 25,000 किलोमीटर को तय करना है 24 घंटे में, तो एक घंटे में कितने 1000 और ऊपर, ये बाद में कैलकुलेट करना एग्जैक्टली। तो उस स्पीड से अगर हम जाते रहेंगे तो क्या अनुभव करोगे आप, आ गए हवाई जहाज, क्या अनुभव होगा एक घंटे के बाद, अगर आप सूर्य को देख सकते हो, देखोगे कहाँ होगा सूर्य, कहाँ होगा, बिल्कुल सिर के ऊपर ही होगा। दो घंटे के बाद वही स्थिति होगी, तीन घंटे, 10 घंटे के बाद और 24 घंटे के बाद और सब समय सूर्य आपको अंधेरा का दर्शन ही नहीं होगा, रात्रि का अनुभव ही नहीं करोगे आप। ब्राइट साइड जो है उसी साइड में उस रहोगे। इतना ही नहीं, सूरज बिल्कुल आपके सिर के ऊपर होगा। अगर आप इस गति से हवाई जहाज में बैठ के पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर रहे हो, अब ये सब कहने का तात्पर्य क्या है, या यह है कि हम भी सदैव कीर्तन करते रहेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भक्ति करते रहेंगे और भागवत का श्रवण करते रहेंगे और मनन करते रहेंगे और दर्शन करते रहेंगे। जो भी कार्य करते भगवान के प्रसन्नता के लिए करेंगे तो कृष्ण सदैव हमारे साथ रहेंगे, बिल्कुल ऊपर रहेंगे, आगे पीछे रहेंगे। तो हम अंधेरे से और माया से सदा के लिए मुक्त हो पाएंगे। तो ऐसी स्थिति थी प्रह्लाद महाराज की। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, और इसीलिए भी वासुदेवे भगवती यश नैसर्गिकी रति ही। और ऐसे प्रह्लाद महाराज कश्चित् हसति उद्गायति क्वचित्, ये भक्तों के लक्षण हैं। कभी वो हंसेंगे तो कभी रोएंगे। नृत्यति क्वचित्, कभी नृत्य करेंगे। क्वचित् पुलक तुष्णिम आस्ते, कभी तो उनके शरीर में रोमांच, कभी आंसू बहा रहे हैं। रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हम लोग इस प्रकार आचार्य गणों की प्रार्थना करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं। कैसे आचार्य गण? महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्र माध्यम मनसो रसेना, रोमांच कंपा श्रुत रंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ऐसे आचार्यगण प्रह्लाद महाराज और आचार्यगण कैसे क्या करते रहते हैं? महाप्रभु का भगवान का सदैव कीर्तन और नृत्य करते रहते हैं, वाद्य बजाते रहते हैं भगवान के प्रसन्नता के लिए। और उससे क्या होता है, कई भक्ति के लक्षण उनके अंग अंग में प्रकट होते हैं। शरीर का रोमांचित होना, या अश्रु बहाना, कभी हंसना तो कभी रोना तो कभी नृत्य, ये सारे लक्षण प्रह्लाद महाराज में थे। जब हम ऐसे भक्त को देखते हैं इन लक्षणों के साथ, हम तो एक ही व्यक्ति को देखते हैं, अरे क्यों हंस रहा है, अरे क्यों रो रहा है, क्यों, हमको पता नहीं है। उस व्यक्ति की जो हमारे समक्ष भक्त है, उसका व्यवहार चल रहा है, उसकी लेन देन या आदान प्रदान प्रभु के साथ हो रही है, वो भगवान के साथ बोल रहा है, या भगवान छिप गए तो फिर रोता है कहाँ है। हे राधे ब्रज देवी के च ललिते हे नंद सुनो कुतः, कहा हो कृष्ण, करके वो रोएगा, आंसू बहाएगा। हमको तो पता नहीं चल रहा है पागल कहेगा क्या क्या हुआ, क्या क्यों रो रहा है। वो जानता है अंदर क्यों रो रहा है वो। कदा द्रक्ष्यामि नन्दस्य बालकं नीपमालकं। क्या कदा द्रक्ष्यामि, कब देखूंगा, कब देखूंगा मैं, किसको देखना चाहते हो। नन्दस्य बालकं, नंद महाराज को जो बालक है, कैसा है बालक वो और भी बता दो, कैसा है बालक वो नंद महाराज का। नीप मालकम, कदम के फूलों की माला पहना हुआ वो नंद का बालक। कदा द्रक्ष्यामि, कब देख पाऊंगा मैं। लसत तिलक भालकम, उस बालक ने अपने भाल पर तिलक पहना हुआ, और कैसा है तुम्हारा ये नंद का बालक। वो है पालकम, पालक है सर्वसत्वानाम, अपने भक्तों का पालन करता है वो जो। नंदस्य बालकम कदा द्रक्षामि, ऐसा कहते हुए दौड़ेगा, खोजेगा, रोएगा, गिरेगा, उठेगा, जमीन में लौटेगा। ये सारे लक्षण प्रहलाद महाराज में। तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकशपुर राजन अकरोद अघम आत्मजे। और ऐसे महान महाभागवत, महाभाग मतलब भाग्यवान, भाग्यशाली, धन्य है प्रह्लाद। धन्य मतलब धनी है, धन्य किसको कहते, जो धनी है, धन्य, धन्य हो आप मतलब धनी हो आप। कौन सा धन था प्रह्लाद महाराज के पास? प्रह्लाद महाराज के पास भगवान ही थे। और कैसे है भगवान? लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम्। ऐसे भगवान जिनके जिनके चरणों की सेवा असंख्य लक्ष्मियां करती है, तो जिनको लक्ष्मी नारायण प्राप्त है वो क्या धनी नहीं? तो उससे भी और कोई धनी हो सकता है? धन्य हो आप जो भगवान को प्राप्त करता है, धनी है, भाग्यवान है, महात्मा है। तो प्रह्लाद महाराज ऐसे महात्मा होते हुए भी ये हिरण्यकश्यपु क्यों सता रहे थे, उसका अनिष्ट क्यों चाह रहे थे, चाह रहा था कहना चाहिए वैसे, कौन चाह रहा था ये हिरण्यकश्यपु बदमाश कहीं का, सभी कह सकते, क्यों सता रहा हे राजन। युधिष्ठिर वाच, वैसे क्यों सता रहा था ये मैंने थोड़ा ठीक से नहीं कहा, ये प्रश्न नहीं था, ये जानकारी थी जो नारद मुनि ने जानकारी दी। इस प्रकार की जानकारी नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को दी। जब तब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, देवर्ष हे देवर्षि नारद, एतद् इच्छामो वेदितुम्। मैं आपसे जानना चाहता हूं, यदात्मजाय शुद्धाय, ऐसा पुत्र प्रह्लाद, इतना शुद्ध भक्त भगवान का, और फिर आपने अभी अभी मुझे सुनाया कि उसका पिता इतना कष्ट देता था, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? पुत्रान विप्र विप्रतिकुलान स्वान पितरः पुत्र वत्सलः। वैसे माँ बाप तो अपने अपत्य के प्रति तो उनका स्नेह होता है, और मान लो कि कभी बच्चे ने कोई शैतानी की तो आहो शिक्षार्थम उसको थोड़ा सुधारने के लिए उपालभन्ते, कुछ डांटना फटकारना तो ये तो हो सकता है, इतना तो हम स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि पिता बन गए उसके शत्रु, और पिता तो अपने पुत्र का वध करना चाहता था, तो इसको कैसे हम समझ सकते हैं? एतम एतदिच्छामो वेदितुम, इसको मैं जानना चाहता हूं, कृपया कुछ प्रकाश डालिए इस बात पर। ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना था कि कोई पिता ही अपने पुत्र का शत्रु हो। कुछ मतभेद होना, मत मतांतर, ये तो संभव, ये तो, लेकिन पिता शत्रु हो ये तो कभी सुनने पढ़ने में नहीं आया है। नारद उवाच, तो इसके उत्तर में अब नारद मुनि समझाएंगे क्यों बना ऐसा महान भक्त प्रहलाद महाराज। हिरण्यकश्यपु ने उसको अपने पुत्र को शत्रु के रूप में क्यों मान लिया, और शत्रुवत कैसे क्यों व्यवहार करने लगा, उसका इतिहास, अब कौन कौन सी घटनाएं घटी उसका वर्णन नारद मुनि सुनाएंगे। श्री नारद उवाच, आप समझते होंगे उवाच मतलब कहा, श्री भगवान उवाच भगवत गीता में आता है। अर्जुन उवाच, नारद उवाच, आप उवाच, आपने उचुहु होगा बहुवचन में, आप सभी ने कहा, गोप्यः उचुहु, उचुहु होता कईयों ने कहा, तो एक व्यक्ति है नारद उवाच। तो पुरोहित थे, नारद मुनि बता रहे पुरोहित थे, आसुरों ने पुरोहित का स्वीकार किया, और वे पुरोहित थे शुक्राचार्य, और इस शुक्राचार्य पुरोहित के दो पुत्र थे, षंड अमरको सुतो तस्य, षंड और अमरक नाम के दो पुत्र थे, दैत्यराज ग्रहांतिके, और ये दोनों षंड और अमरक, not too loud this thing or no, दैत्य राज ग्रहांति, तो उनका निवास स्थान इन दोनों शुक्राचार्य के पुत्रों का, जो पुरोहित का भी वे भी कार्य करते थे, उनका स्थान हिरण्यकश्यपु के निवास स्थान से कुछ ही दूरी पर था, अधिक दूर नहीं था। तौ राज्ञा प्रापितं बालं प्रह्लादं नव कोविदं, तो हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को उस इन दोनों के पाठशाला में, षंड और अमर जिसको चलाते थे, जिस स्कूल को चलाते थे, उसमें एडमिट कर दिया। पाठयामास तू पाठ्यानन्यांश्चासुर बालकान, और केवल प्रहलाद महाराज नहीं, और भी बालक, और हर बालक असुर बालक, असुरों के पुत्र थे, नो ट्रेनिंग, ऐसे ही तामसिक राजसिक और चरित्रहीन दानव प्रवृत्ति, कल्पना कर सकते हो जिस प्रवृत्ति का प्रदर्शन आज कल दिखाई देने लगा है। न साधु तो ये प्रहलाद महाराज भी अन्य बालकों के साथ मित्रों के साथ पढ़ाई तो कर रहे थे। न साधु मनसा मेने, लेकिन उस पढ़ाई में उनका मन नहीं था। चलो पिताजी चाहते हैं एज ए ड्यूटी उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, लेकिन मन नहीं था प्रहलाद महाराज का उस शिक्षाओं में। असुर के बालक तो असुर कैसे बनेंगे, कैसे बदमाश बन सकते हैं, कैसे ये सब ट्रेनिंग। स्वपर असत गृहाश्रयम, एक बात से प्रहलाद महाराज को विशेष समस्या थी और बातों में, एक बात स्वपर, ये अपने हैं, ये लोग अपने हैं, ये पराये हैं, इस प्रकार का ट्रेनिंग, इस प्रकार का भेद विषम भाव की खूब चर्चा और खूब ट्रेनिंग। ये अपने लोग हैं, ये दानव अपने हैं, ये असुर अपने हैं, ये सूर मंडली दूसरी है, ये शत्रु, ये मित्र, ये अपना, ये पराया, ये देशी, ये विदेशी, हिंदू, ये मुसलमान, ये काला, ये गोरा, ये स्त्री, ये पुरुष, ये धनी, ये निर्धन, और इसका कोई अंत ही नहीं। ऐसी ये सूची बहुत लंबी हो सकती है। इसको द्वंद्व कहते हैं शास्त्र की भाषा में, भगवत गीता की भाषा में इसको द्वंद्व कहा। द्वंद्व दो है, द्विधा दो प्रकार, इससे ही भरा हुआ ये सारा संसार। इन बातों से समस्या थी प्रहलाद महाराज को, वे ऐक्य देखना चाहते थे। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, ये अपने लोग है, ये पराये लोग है, ऐसी जिसकी सोच है गणना उसकी गिनती होगी किनमें, लघु चेतसाम, जो लघु चेतना वाले, लघु चेतसाम संकीर्ण विचार के नीच लोग, इस प्रकार ये अपना पराये का जो भेद है। हाँ ये अपने निजः, अयम निजः, परहा परहा वेत्ति गणना लघु चेतसाम, किंतु उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम्, लेकिन जो उदार दिल के, उदार उदार दिल, विशाल दृष्टि भी है और दिल भी बड़ा है जिनका, कितना बड़ा दिल है, वसुधैव कुटुंबकम्, संसार में जितने लोग हैं वे सारे मेरे परिवार के हैं, सारे मनुष्यों का मिलके, केवल मनुष्यों का ही नहीं, पशु भी मिला दो, वृक्ष भी आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे, सभी मिलके मेरे परिवार के सदस्य है, वसुधैव कुटुंबकम्। तो ये दिल बड़ा कैसे हो जाता है, भगवान को वहां बिठाने से दिल भी बड़ा हो जाता है। भगवान बड़े हैं, उनके लिए जगह ज्यादा चाहिए ना, भटाला दिली ओसरी, फिर भट क्या करता है, हाथ पाए पसरी। तो भगवान को भी स्थान दिल में, भगवान को स्थान देने से भगवान क्या करते हैं, भगवान तो वैसे दिल में उनको बिठाना थोड़ा कठिन हो जाता है कि भगवान, हमारे कृष्ण भगवान कैसे टेढ़े हैं, अगर सीधे हो तो सीधे उनको ऐसे ही डाल देते, लेकिन वो टेढ़े हैं, इसीलिए कोई टेढ़ी चीज को घर के अंदर भी ले जाना है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो भगवान से जो त्रिभंग ललितम ऐसे ऐसे करके कई जगह बैंड हो जाते हैं कृष्णा, तो उनको अंदर ले जाना है तो फिर इतना सरल नहीं है। लेकिन एक बार अंदर गए तो फिर उनको बाहर निकालना भी तो जब अंदर बैठ ही जाते हैं वे, तो वैसे भी टेढ़े होने से ज्यादा जगह लगती है उनको, और वे अकेले नहीं है, सारा संसार सारे जीव और भगवान के भक्तों के हृदय में गोविंद का विश्राम का गोविंद विश्राम। और ऐसे भक्त का संग करने से हमें भगवान का संग प्राप्त होता है। प्रह्लाद महाराज जैसे भक्तों का संग जिनके हृदय प्रांगण में भगवान है, और फिर वो भेद नहीं देखते। पंडितः समदर्शिनः समदृष्टि, कितना कल्याण होगा इस संसार का। जस्ट वन लिटिल, थोड़ी सी एडजस्टमेंट अगर हम कर सकते हैं, बस अगर हम सभी इस विचार के बन जाते हैं कि पंडितः समदृष्टि, ये सारे हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। ये सारे भेद दानव प्रवृत्ति का प्रदर्शन है। इस भागवत के प्रचार और प्रसार से, गीता के प्रचार प्रसार से, कृष्ण भावना के प्रचार और प्रसार से, ये जो भेद है अपना पराया, जिसके कारण हम लोग फिर AK-47 लेके फिर चलते बाहर, जो पराये हैं उनको उड़ाने का। सभी अपने हैं, ये विचार है, ये भाव है प्रह्लाद महाराज का, इस विचार में स्थित है, स्थिर है, स्थितोस्मि गत संदेह, ऐसे है प्रह्लाद महाराज। तो उनके स्कूल में तो पढ़ाया जाता था और ही, ये अपना ये पराया, ये शत्रु ये मित्र, इस बात से उनको समस्या थी और इसीलिए वो दुखी थे। पढ़ाई में स्कूल में दिल नहीं था। एकदा सुरराट पुत्रम अंकम आरोप्य पांडव, अपने पुत्र को अंक में गोद में बिठाए, तो पुत्र जब घर में था, एक दिन की बात है, प्रह्लाद महाराज को बिठाया गोद में और हिरण्यकश्यपु ने पूछा, प्रपच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान, बेटा प्रह्लाद आओ आओ आओ, यस डैडी कहा होगा, डैडी तो नहीं कहा, आजकल ये आजकल का डैडी ये चल रहा है, डैडी 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 कहते, कुछ लोग तो डैड कहते, डैड डैड कहते कहते फिर डैड डैड हो जाता है, डैडी इज डैड डैड, ये कोई सम्माननीय, ये कोई सम्मान नहीं हुआ पिता श्री का, तो पिता है डैड, तो फिर मम्मी मम्मी, इजिप्ट इजिप्ट में मम्मी होती है, जो मृत शरीर है, शव जो है उसको संभाल के रखते हैं, जब तब उस डेड बॉडी को क्या कहते हैं, मम्मी कहते हैं, मम्मी मम्मीज, तो पिता है डैड और माता है मम्मी। वाह, ये तो दानव कल्चर हो, ये पाश्चात्य देश की नकल हुई, ये हमारी संस्कृति नहीं रही। भ्राता श्री पिता श्री, जब आप देखते होंगे और रामायण और महाभारत, तब चलता था भ्राता श्री पिता श्री माता श्री, ऐसे संबोधित करने की विधि और परिपाटी। तो प्रहलाद जब गोद में बैठे तो उन्होंने, बेटा बेटा ये बता दो कि तुम जो कई बहुत समय से भी पढ़ रहे हो, तो तुमको कौन सी अच्छी बात तुम सीखे हो, तुमको कौन सी बात अच्छी लगती है, थोड़ा बता सकते हो? हाँ हाँ डैडी, डैडी यस पिताश्री, यस विनय, हाँ जी। प्रहलाद उवाच, उन्होंने कहा, तत्साधु मन्ने असुर वर्य देहिनाम सदा सम उद्विग्न धियाम असद्गृहात्। हित्वात्मपातं गृहं अंधकूपं वनं गतो यद् हरिम आश्रयेत। पहले संबोधित कैसे वैसे किया उन्हें, असुर वर्य, आप वर्य हो, श्रेष्ठ हो, गुरु वर्य, वर्य मतलब श्रेष्ठ, तो कैसे आप श्रेष्ठ हो लेकिन असुर वर्य, असुरों में तुम श्रेष्ठ हो हे पिताश्री। हाँ, तो आपने मुझे पूछा कौन सी बात मुझे अच्छी लगती है, तो वैसे इस संसार में तो लोग बड़े ही कष्ट का अनुभव करते हैं, उद्विग्न रहते हैं, ग्रह अंध कूपम अगृह में रहते हैं, घर में गृह में रहते हैं। उसको प्रहलाद महाराज का अंधकूपम, गृहम अंधकूपम, गृह एक कुआ है, उसको अंधकूपम क्यों कहा, क्योंकि इतना गहरा है कि बाहर का प्रकाश वहां पहुंचता ही नहीं है, इतना गहरा वो कुआ है, या उसको ढका हुआ है, कुआ है तो कभी ऊपर से ढकने से पत्ते है और कोई शाखा है ऐसा ढक देते हैं। जब हाथी को पकड़ना होता है वन में, तो अंधकूपम का आश्रय लेते हैं, अंधकूपम की मदद से हाथी को पकड़ा जाता है, तो अंधकूपम वो क्या है, कुआ, या कोई कुआ कह सकते हैं, कुआ को खोदेंगे और उसको ढकेंगे और फिर एक हाथीनी को भी लाएंगे, तो हाथीनी को हाथी देखते ही फिर हाथीनी के पीछे दौड़ता है और उसको इतने तेजी से दौड़ाएंगे हाथीनी को, तो हाथी भी तेजी से दौड़ते 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 जब कुएं के पास जब वो पहुंच रहे हैं, तो बड़े चालाकी से हाथीनी को हटाएंगे, तो पीछे से दौड़ते हुए आने वाला जो हाथी है वो सीधे आगे बढ़ेगा और कहाँ गिरेगा, धड़ाम करके उस अंधकूपम में। जब गिर जाता है तो फिर पकड़ लो। तो मैथुन के कारण ये हाथी पकड़ा गया अंधकूपम। तो उसका भी संबंध है, उसके कारण भी गृह अंधकूपम बनता है, मैथुन्यागार भी कहा है, ग्रहकूपम अंधकूपम। हितवात्म, तो लोग भूल जाते हैं अपना हित किन बातों में, उसको भूल के अपना पतन करते हैं और गिर जाते कहां, अंधकूपम, ग्रह अंधकूपम। तो आपने मुझे पूछा तुमको कौन सी बात अच्छी लगती है, तो पिताश्री मैं ये कहूंगा वनम गतो, ऐसे लोगों को वन में जाना चाहिए। यद हरिमाश्रयेत, जहां जिस वन में, उसमें भी वृंदावन या दिंडीर वन, जो पंढरपुर है वो क्षेत्र दिंडीर वन कहलाता है। वैसे सभी बड़े क्षेत्र वहां वन या कोई नदी कोई ऐसे स्थान या अधिकतर वन पंचवटी, तो वन में जाना चाहिए और वहां हरि का आश्रय लेना चाहिए। तो ये उत्तम बात है, ये साधु सम्यक उचित बात तो ये है, ऐसे ऐसे मेरा कहना है। 51 कोई बता रहा था, 51 तो कब जाना चाहिए मन में, 50 वर्ष की आयु के उपरांत या अधिक से अधिक 50 वर्ष की आयु तक घर में रहो, गृहस्थ आश्रम में, फिर वानप्रस्थ वन में प्रस्थान। 51 हो जाता है, 51 उसके साथ क्या कहा है, 51 फिर थोड़ा आप रुक गए, फिर 52 वहां भी वन है, तो एक 51-52 ये साल जो है ये वन में जाने के हैं। शायद आप में से कोई 50 के ऊपर और कोई नहीं है यहाँ, सब 50 से कम उम्र वाले ही पहुंचे हैं यहाँ, क्योंकि अधिक अगर उम्र होती तो आप वन में जाते ही, लेकिन आप नहीं गए हो मतलब आपकी उम्र 50 से कम। तो ये बात जब सुनी प्रह्लाद की, श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्यः परपक्ष समाहितः, ये बात जब सुनी तो इस बालक की इस प्रस्ताव पर वो हंसने भी लगे। जहास बुद्धिर बालानाम, ये तो बुद्धि बालक जैसा बात कर रहे हो, ये तो बचपनी, और साथ ही साथ कर आ जरूर मेरे पुत्र को किसी ने बिगाड़ा है। और शंड और अमर के आश्रम में वो क्या हरे कृष्ण हरे राम वाले जाते हैं क्या, पूछा होगा, नहीं तो ऐसी भाषा तो मेरा पुत्र नहीं बोलता। मैंने तो शंड और अमर को पूरी गाइडलाइन दी थी, मैं असुर वर्य हूं, तो मेरे पुत्र को भी ऐसा ही फर्स्ट क्लास असुर बना दो, एक्सलेंट। तो उनके प्रयास भी तो चल रहे थे मेरे पुत्र को वैसे ही बनाने का, लेकिन यहां तो ये साधु भाषा बोल रहा है। परपक्ष समाहिता, परपक्ष मतलब देवताओं का पक्ष, उस पक्ष के किसी ने पर बुद्धि भी ही, उसमें बुद्धि में कोई बिगाड़ लाया। विष्णु पक्ष, किसी विष्णु पक्ष के व्यक्ति ने मेरे पुत्र को प्रभावित किया है। ग्रहम मानीत आहूय प्रह्लादम दैत्य याज, तो ये बात प्रह्लाद की जब सुनी तो हिरण्यकश्यपु ने ए गो जाओ शंड और अमर को बुलाओ, तो उनके सिपाही अंगरक्षक गए और लेके आए हैं शंड और अमर को। और वे पूछते हैं प्रशस्य लक्ष्मण या वाचा, नम्रता पूर्वक पूछा जा रहा है, वत्स प्रहरा, तो वैसे उनको डांटे फटकारे हैं शिक्षकों को भी। और प्रह्लाद महाराज पुनः जब स्कूल में गए तो यह पूछने वाले वैसे शंड और अमर की है। शंड और अमर पूछ रहे हैं, बेटा प्रह्लाद सत्यम कथ यमा अमृषा, झूठ नहीं कहना सत्य कहो। बुद्धि विपर्य यहा कुतः, तुम्हारे बुद्धि में ये जो भेद आया, ये बातें हमने तो आपको नहीं तुमको नहीं पढ़ाई थी, तुम अपने पिता को ऐसी बातें क्यों कही? सत्य कहो। बुद्धि भेदा परकृता उता होते स्वता स्वतो अभवत, ये तुम्हारे स्वयं की प्रेरणा से स्फूर्ति से तुमने ये सारे बातें कही कि तुमको और किसी ने ये सिखाई समझाई पढ़ाई, तुम्हारा ब्रेन वॉशिंग किया, तुम्हारे दिमाग को उल्टा पलटा कर दिया। भण्यताम श्रोतु कामानाम गुरुनाम कुलु नंदन, कृपया बता दो हे कुल नंदन, असुर कुल के नंदन बता दो। प्रह्लाद उवाच, इसके जवाब में प्रह्लाद महाराज कहते हैं, स तस्मै भगवते नमः। पहले तो उत्तर देने के पहले उनका क्या चल रहा है, तस्मै भगवते नमः, मेरा भगवान को नमस्कार। नरसिंहदेव भगवान की, भगवान को नमस्कार करते हुए, भगवान को का स्मरण करते हुए उत्तर दे रहे हैं। स मतलब वो भगवान, यदा अनुव्रतः पुंसाम पशु बुद्धिर विभिद्यते अन्यः एषा तथा अन्यो अहमिति भेदगता सति। तो वो भगवान ही सब कारणों के कारण है, मैंने जो भी कहा इसका कारण मैं भी नहीं हूं, न तो अन्य कोई हरे कृष्ण वाले और कोई कारण नहीं है बता रहे। तो भगवान वही है जो सभी के हृदय प्रांगण में सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, भगवान कह रहे। भगवान अर्जुन को कहे, हे अर्जुन मैं सभी के हृदय में विराजमान हूं। और मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, और मुझसे ही बुद्धि सुबुद्धि को बुद्धि भी कोई चाहता है या उसके लिए कोई पात्र है। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, स्मरण है स्मृति और अपोहनम च विस्मृति है, ये मुझसे ही आती है। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, स्मृति ज्ञान उसकी विस्मृति मुझसे ही आती है। कोई कहता है कि भगवान भगवान है तो उसको हम लोग अस्ति कहते हैं, हाँ अस्ति अस्ति, हाँ अस्ति भगवान है, अस्ति मतलब है, संस्कृत में अस्ति का अर्थ ही अस्ति मतलब है। तो कौन है, वो है भगवान है, अस्ति का जो मानता है स्वीकार करता है अनुभव भी करता है कि भगवान है उसको अस्ति का कहते, ना अस्ति का वो नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति का नहीं है वो नहीं है, तो दोनों को भी दोनों से भी कहलवाने वाले ये कह रहा है भगवान है भगवान नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, ये दोनों के पीछे भगवान है। एक व्यक्ति मिलने गए अपने मित्र को, पाटिल गए, पटेल को मिलने गए, तो उन्होंने बेल बजाई होगी। तो बेल जब बजी तो घर में वैसे छोटे बालक दौड़ते हैं, बाकी लोग थोड़े आराम से भी चलता है उनका दरवाजा खोलने का, लेकिन छोटा बालक क्या करता है, बेल बजते ही स्वयं जाता है खोलता। तो ऐसे ही हुआ, पाटिल का घर के दरवाजा खुल गया। तो पटेल ने पूछा, ओह तुम्हारे पिताजी है घर में, मैं मिलना चाहता हूं। तो बालक ने कहा कि आप पूछ के देख के आता हूं, देख के आता हूं। तो छोटा बालक गया और ढूंढने लगा, पिताजी है नहीं है, कहाँ है। पाटिल का घर, पाटिल जो है उनका घर भी बड़ा, तो ढूंढने में थोड़ी देरी भी लगी। तो पिताजी मिले, तो पिताजी से बालक ने कहा, पिताजी पिताजी, ओ पटेल जी है ना, हाँ ओ हाँ ओ पटेल, हाँ उसका उनके बारे में क्या, ओ आपको मिलना चाहते, वो आए हैं। तो पाटिल ने कहा कि बेटा उनको बता देना कि मैं यहां नहीं हूं। तो छोटा बालक भागे दौड़े गया, अभी प्रवेश द्वार पर आया, पटेल जी प्रतीक्षा कर ही रहे थे, कब से आ रहा है, आता है बालक, कितनी देर लगा रहा। तो फिर तो बालक ने कहा, पटेल जी मेरे पिताजी ने कहा कि मैं यहां नहीं हूं। किसने कहा, तुम्हारे, हाँ मेरे पिताजी ने कहा कि मैं यहां नहीं हूं। तो अगर कोई कहता है कि भगवान नहीं है तो कौन कहलवा रहा है उससे, भगवान ही। कोई कहता कि भगवान है इसके पीछे के कारण भगवान है, और कोई कहता कि भगवान नहीं है उससे भी कहलवा रहे हैं, कौन कह रहा है, भगवान कह रहा है। तुम ऐसा समझना चाहते हो, तुम्हें भी मैं बहुत मिर्च मसाला दे सकता हूं। ऐसा सोचो वैसा सोचो, ये तर्क वितर्क, इसके साथ अपना समाधान करो कि भगवान नहीं है। तो प्रहलाद महाराज का कहना है कि तुम मुझे पूछ रहे हो हे शंड और अमरक गुरु महाराज कि किससे मैं प्रभावित हूं, तो मैं बता रहा हूं, तस्मै भगवते नमः, वो भगवान मुझे प्रभावित कर रहे हैं। वासुदेवे भगवती यश नैसर्गिकी गति, जिनमें मेरी नैसर्गिक आकर्षण है, जिन जिन भगवान में प्रहलाद महाराज आगे कहते, यथा भ्राम्यति अयो ब्रह्मन, जैसे लोहा लोह चुंबक से आकर्षित होता है, तथा मेरी भी स्थिति वैसी ही है। कृष्ण भगवान मेरे लिए वो लोह चुंबक है, वो पावरफुल मैग्नेट है, मैं तो एक लोहे का कण मात्र हूं, बस अगर उस लोहे के कण अगर ढका हुआ है मिट्टी से या और धूली से, तो फिर उस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड में भी अगर कोई लोहे के कण है तो लोहे के कण आकर्षित नहीं कर पाएगा वो लोह चुंबक, लेकिन उसके ऊपर की धूल को हटा दे तो वो धूली के कण, नॉट धूली के, लोहे के कण दौड़ के आएंगे लोह चुंबक की ओर। ये तो नैसर्गिक है, ये तो स्वाभाविक है। नारद उवाच, तो ये सारी बातें जब शंड और अमरक ने सुनी तो वे बड़े क्रोधित हुए, भर्त्सना करते रहे। कुपितः निर्भस भर्त्साथ सदीनो राजसेवक। ओ बेचारे राजसेवक शंड और अमर्क, वे डरे हुए थे। अब कैसे पढ़ाया जाए, समझाया जाए इस प्रह्लाद महाराज को, समझता ही नहीं है। हम सिखाते एक और ही कुछ सीखता है। तो थोड़ा क्रोधित होके आनीयताम, अरे ले आओ ले आओ, क्या बेत्रम, बेत ले आओ, छड़ी लेके आओ, पीटेंगे इस बालक को। अस्माकम अयशस्कर, हमारे हमको हमारा नाम बदनाम कर रहा है। कुलांगर अंगरश्य दुर्बुद्धि, ये दुर्बुद्धि वाला, ये कलंक हमारे कीर्ति को कलंक लगा रहा है। हम इसको दंडित करेंगे। वैसे चौथी बात दंड, दंड होती है। साम होता है, फिर क्या दान होता है, भेद होता है, फिर दंड होता है। तो इसका मतलब दंड, सीधे दंडित ही करेंगे। अलग अलग ये नीति है, ये विधि है। दंड, किसी को दंड देने के पहले शाम कोई उपदेश करो, उसे नहीं सुनता है तो कुछ लालच, कुछ रिश्वत, कोई दान की बात करो, उसे भी नहीं मानता तो फिर भेद, डिवाइड एंड रूल की बात करो, कुछ बंटवारा करो, और उसे भी नहीं मानता तो फिर दंडित करो, दंड दो। तो ये दोनों गुरुजन अपने शिष्य को दंडित करना चाहते हैं, और वे कहते हैं दैतेय चंदन वने जातो यम कंटक द्रुमः। अरे दैत्य वंश में जो चंदन, चंदन वन जैसा है, दैत्य जो वंश है उसको चंदन वन की तुलना दे, ये चंदन वन जैसा हमारा दैत्य वंश, कंटक द्रुमः, ये चंदन वन में ये काटेदार ये बबूल का पेड़ कहां से उगाया? हम सारे चंदन के पेड़ है, और ये देखो बबूल का पेड़ है। उसे उल्टा कहना चाहिए था, दिमाग ही ऐसा है। चंदन शीतल होता है, जैसे प्रह्लाद महाराज शांतहा, शांत होने से शीतल भी, और ये लोग गर्मा गर्म है। ऐसे धमकाते हुए डाटा और सावधान, पुनः अपने पिताजी को ऐसी कुछ बात तुम कहोगे दोहराओगे तो। और फिर आगे फिर पढ़ाते रहे। त्रिवर्गस्य उपपादनम्। तो उन्होंने अधिकतर काम और अर्थ की बातें सिखाई, ये धर्म मोक्ष कम ही सिखाया, यह धन कमाने की विद्या सिखाई, लेकिन अर्थ का उपयोग, धन का उपयोग भगवान की सेवा में करना, ये तो नहीं सिखाया। धन कमाना है, खर्च करना अपने ऊपर, बस इतना सिखाया। क्योंकि अहम ईश्वरो अहम, अहम भोगी बलवान, अहम सुखी, ये जो विचार है ये आसुरी संपदा का के विचार संस्कार डाले जा रहे थे इन, तो इनको प्रह्लाद महाराज गुरुजी गुरुजी तो कहते रहे, गुरुजी गुरुजी। आजकल गुरुजी गुरुजी नहीं कहते, आजकल क्या कहते, सर 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 सर, जब हम छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे, हम गुरुजी कहते थे, गुरुजी हमारे जो टीचर थे गुरुजी कहते। लेकिन फिर हमारे वो गुरुजी कहते, ए ए रघुनाथ इकड़े इकड़े, उनको बुला। हम जो पास में जाते थे, हाँ एक ये पैसे बीड़ी घूमने आई ना, बीड़ी घूमने आई। नाम तो सोनू भाई, हाथी का थोड़ा सा वाड़ा, तो नाम तो बड़ा गुरुजी, लेकिन बीड़ी फूकने वाले ये तो गुरुजी तो अच्छा है। आजकल गुरुजी कहना भी बंद करे, सर सर ही कह रहे तो फिर फूकते हैं, फिर सर तो फिर सर तो फिर वो धोती भी नहीं रही, हिंदुस्तान की धोती नहीं रही, पतलून मेरी पतलून इंग्लिस्तान की, मेरा जूता है जापान का, कोल्हापुर का नहीं, मेरा जूता जापान का। ये सब हो रहा, जो पहले था अब भी है, कम अधिक मात्रा का ही अंतर है। दैतेन्द्र दर्शयामास, तो पुनः अब प्रह्लाद महाराज जब राजभवन में महल में थे पिताजी के साथ, दैतेन्द्र दैत्यों के इंद्र, तो छोटे प्रह्लाद को उसका स्नान वगैरह हुआ, मातृमृष्टम अलंकृतम उसको वस्त्र पहनाए और पिताश्री के पास ले गए। अभी वे स्कूल से लौटा है, बोर्डिंग स्कूल में वही रहता था, अभी कई दिनों के बाद कई महीनों के उपरांत लौटा हुआ है खूब पढ़ाई करके। तो वह उसको ले गए पिताजी के पास, पादयो पतितं बालम। तो बालक प्रह्लाद जब अपने पिताजी के सिंहासन की ओर आगे बढ़े और पहुंचे भी वहां, तो पहले तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, पतितं बालं प्रतिनन्द्याद् आशिषासुरः, और असुर ने भी प्रह्लाद महाराज को आशीर्वाद दिए, आशीर्वाद दिया, न जाने पता नहीं कौन सा आशीर्वाद दिया होगा। परिष्वज्य चिरं दोर्भ्याम परमामाप निर्वृतिम, तो उसको उठाए भी और बालक को आलिंगन दिए, अपने गोद में बिठाए, आरोप्यंकम अवघ्राय मूर्धनि, और उसके सिर का सूंघ रहे, ये भी अपना स्नेह व्यक्त करने की एक प्रकार है, बालक के बाल या सिर को सूंघना, सूंघ रहे। और फिर पूछते हैं हिरण्यकश्यपुर उवाच, पहले परीक्षा हुई थी, अब दूसरी परीक्षा यहां हो रही है, अभी लौटा है पढ़ के बालक। प्रह्लाद अनुसुच्यताम, बताओ बताओ प्रह्लाद, तात हे बालक स्वधीतम किंचित उत्तमम। पहले साधु पूछा, कौन सी साधु कौन सी बढ़िया बात तुम पढ़े हो, पहले पूछा था, अब दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कोई किंचित उत्तम बात तुमने पढ़ी होगी, काल तो बहुत बीत चुका है, गुरु और गुरु के आश्रम में रह के तुम आए हो, तो बता दो क्या सीखे हो, कोई उत्तम बात बता सकते हो, एक सैंपल कोई बात बता सकते हो? हाँ क्यों नहीं। ऐसा कहते हुए प्रह्लाद उवाच, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। बस बस हो गया, कहा होगा है, स्टॉप स्टॉप वर्ड नहीं नहीं और बचा हुआ आत्मनिवेदन, स्टॉप बताते जा रही है। ये उत्तम बात, आपने उत्तम बात पूछी ना, तो सर्वोत्तम बात तो यही है। ये नौ बातें सर्वोत्तम बातें हैं, जिसकी शुरुआत कहां से, श्रवणम, श्रवण से, सुनने से इसकी शुरुआत होती है। कीर्तन, जो बातें सुनी है उसको कहना है, उसको श्रवण कीर्तन कहते हैं। और श्रवण और कीर्तन करने से विष्णु स्मरणम, विष्णु का स्मरण होता है, भगवान का स्मरण होता है। लोग कई बार वैसे कहते हो भगवान का स्मरण करो, हाँ जब हमारे भक्त उनको प्रचार करें भगवान का स्मरण किया करो, तो लोग तो चलता रहता है स्मरण चलता रहता है, लेकिन न जाने कैसे और किसका स्मरण। स्मरण तो तीसरे क्रमांक की भक्ति है। तब तक हम लोग स्मरण नहीं कर सकते जब तक हमने श्रवण और कीर्तन नहीं किया। ओ यू रिमेंबर माई फ्रेंड, अगर आप किसे पूछा मेरे मित्र को आप याद करते हो ना, आप पूछोगा कौन सा मित्र तुम्हारा, कहाँ रहता है, कैसे दिखा, मैं कभी मिला भी तो हूं, ऐसे कई सारे आप प्रश्न पूछोगे। तो फिर वो कहे हाँ या ना या आई डोंट रिमेम्बर, यस हाँ रिमेम्बर, याद करता हूं। तो श्रवण कीर्तन उस भगवान के संबंध में जब हम सुनेंगे, कैसे हैं भगवान, कौन है भगवान, कृष्ण जिन का नाम है और गोकुल जिन का धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। भगवान की पहचान हुई। यशोदा जिन की मैया है, भगवान कैसे, उनकी मैया है, उनकी माँ है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है, नंद महाराज जिनके पिताश्री है, ऐसे श्री गोपाल को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे सुनेंगे हम, राधा जिनकी जाया है और अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे घनश्याम, वे घनश्याम है, उनकी राधा है जो जाया है, उनकी अद्भुत माया है, ऐसे घनश्याम। लूट लूट दधि माखन खायो, प्रातः काल में गोकुल में क्या करते पता है, लूट लूट दधि माखन खाए, माखन मिश्री खाते हैं, माखन की चोरी करते हैं, और फिर दिन में क्या करते आपके भगवान, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, अपने मित्रों के साथ गाय चराते हैं श्री कृष्ण, ऐसे लीला धाम को मेरे बारंबार प्रणाम है, कृष्ण जिन का नाम है, गोकुल जिन का धाम है, ऐसे ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्रवण कीर्तन से फिर उसके डिटेल्स होंगे, ये तो कुछ नाम ही गिनाए, गोकुल है तो फिर वो कैसा है, और कृष्ण है तो कृष्ण नाम की कितनी सारी चर्चा संभव है, और कृष्णा उनका नाम इतना तो कह दिया, लेकिन कृष्ण कहेंगे तो, और उनका नाम अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, कई सारे उनके रूप, कई सारे उनके नाम, कई सारे उनके काम, इनका वर्णन भागवतम में है। श्रवण कीर्तन भागवतम की मदद से होता है, और इसका कोई चिंतन, इसका अगर कोई श्रवण कीर्तन करता है, गीता भागवत करीति श्रवण अखंड चिंतन कुणाचे मिठो बाचे, और कोई गीता और भागवत का अध्ययन करता है, तुकाम हणे तुकारा महाराज का कहना है, कोई गीता भागवत का श्रवण करे तो होगा क्या, अखंड चिंतन विठोबा चे, वो चिंतन कर पाएगा, स्मरण होगा उसको विठोबा का, भगवान श्री कृष्ण का, श्री राम का, राधा कुंज बिहारी का स्मरण होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, इस श्लोक पर प्रभुपाद बहुत विस्तृत व्याख्या लिखे हैं। ये नवविधा भक्ति कहलाती है, और इस नवविधा भक्ति के हर एक एक भक्ति का प्रभुपाद ने समझाया इस भक्ति को। इति पुंसार्पिता विष्णु क्रियते भगवत्यद्धा तन्म तन् तत्मन्ये धीतम उत्तमम। आपने पूछा था कौन सी उत्तम बात है, तो पिताश्री यही सबसे उत्तम बात है। तो इस पर पिताजी की कौन सी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, इसकी आप कल्पना ही कर सकते हो। तो पिता ने कैसे इस ये बर्दाश्त किया या नहीं किया, या क्या कार्रवाई की, कौन से कदम उठाए उन्होंने,